जब काबा की बात होती है तो इब्राहिम की बात जरूर आती है, इसीलिए फरमाया वाइस बवान अली इब्राहिम। अब आप इन सारी आयतों को सुनते वक्त जरा मक्का और उसके गिर्दो नवाह में जाइए, फिर इंशाल्लाह आपको ज्यादा बात समझ आएगी। याद करो वो वक्त जबकि हमने इब्राहिम के लिए खाना काबा की जगह तजवीज की थी इस हिदायत के साथ कि मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना करो और मेरे घर को तवाफ करने वालों और क्याम और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए पाक रखो। इब्राहिम को अल्लाह ने अपने घर की मेंटेनेंस और सफाई का काम दे दिया। इतनी कुर्बानियों के बाद क्या काम मिला? ये काम मिला कि अल्लाह के रास्ते का काम मिला है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, असल ये कि आप किस नियत से करते हैं। और साथ ही कहा लोगों को हज के लिए इसने आम दे दो कि वो तुम्हारे पास हर दूर दराज मकाम से पैदल और ऊंटों पर सवार आए ताकि वो फायदे देखें जो यहाँ इनके लिए रखे गए हैं और चंद मुकर्रर दिनों में इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इनको बख्शे और खुद भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी दें। फिर अपना मैल को चैल दूर करें और अपनी नजरें पूरी करें और इस कदीम घर का तवाफ करें। ये वो सब मरहले हैं जो हज के दौरान होते हैं। ये था तामीर काबा का मकसद और जो कि अल्लाह की कायम करदा हुरमतों का एहतराम करे तो ये इस रब के नजदीक खुद इसी के लिए बेहतर है। और तुम्हारे लिए मवेशी जानवर हलाल किए गए मां सिवा इन चीजों के जो तुम्हें बताई जा चुकी, कहां बार बार बताई गई सूरह बकरा और खास तौर पर सूरह मायदा में और सूरह अलनाम में। बस बुतों की गंदगी से बचो, झूठी बातों से परहेज करो, यकसू होकर अल्लाह के बंदे बनो। दुआ कीजिए यकसू होंगे ना फिर मुकाम हनीफियत मिलेगा, फिर अल्लाह हमें भी इब्राहिम की तरह चुनेगा। और इसके साथ किसी को शरीक न बनाओ जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करे गोया वो आसमान से गिरा। अब या तो इसे परिंदे उचक कर ले जाएंगे या हवा इसको ऐसी जगह ले जाकर फेंक देगी जहां इसके चीथड़े उड़ जाएंगे। ये है असल मामला, इसे समझ लो। और जो अल्लाह के मुकर्रर करदा शायर का एहतराम करे तो ये दिल के तकवा की बात है। दीन के रिचुअल्स क्या हैं? शायर जो थे ना रिचुअल्स हैं। इस्लाम के रिचुअल्स क्या हैं? आप सब जानते हैं, मस्जिद, दाढ़ी, पर्दा, हिजाब और खाना काबा, मस्जिद नबवी, कुरान पाक, इन सब का एहतराम करना चाहिए। कभी मजाक में भी ऐसी चीजों का मजाक ना उड़ाएं, वरना यह दिल से तकवा को उठाने की अलामत होगी। तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक इन हदी के जानवरों से फायदा उठाने का हक है, फिर इनके कुर्बान करने की जगह इसी कदीम घर के पास है। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर कर दिया ताकि इस उम्मत के लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें जो इसने इनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है, बस तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है और इसी के तुम मती फरमान बनो। और नबी बशारत दे दीजिए आजिजाना रविश इख्तियार करने वालों को। हाईलाइट करेंगे आप इस हिस्से को, वबशिरिल मुखबतीन। कौन होते हैं मुखबतीन? अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जिनका हाल ये है कि जब अल्लाह का जिक्र सुनते हैं तो इनका दिल कांप जाता है। सोचिए मैं अल्लाह के जिक्र से कांपती हूं। जो मुसीबत भी इन पर आती है इस पर सब्र करते हैं, हू हा नहीं करते, रिएक्शन शो नहीं करते, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ रिस्क हमने इनको दिया इसमें से खर्च करते हैं। अल्लाह ताला हमें ये खूबियां दे, मुखबित बना दे। अंगारों के बुझने को मुखबित होना कहते हैं। बात आजजी, नरमी आती है। आज जितनी मेरे अंदर नरमी आएगी उतनी बात समझ आएगी और जितना हम इसके लिए तड़पेंगे उतनी ही बात समझ आएगी। यहां आप देखिए कि मैं और आप अपने लिए अमल नोट करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का घर बनाया, फिर एक पुकार लगा दी, वहां कोई भी नहीं था उस वक्त, लेकिन वो वहां अल्लाह की तौहीद की पुकारें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक गाकर दुनिया से चले गए। इब्राहिम नाकाम थे, उनको नहीं पता था कि आज लाखों जायरीन हरम हरम में जाकर हज और उमरा करते हैं। अब मैं जब भी जाती हूँ वहां, अल्लाह ले जाए जब भी, तो वहां जाके हजरत इब्राहिम के बारे में सोचती हूँ कि इब्राहिम जी जब आपने ये घर बनाया था तो क्या इधर कोई बंदा बसता था? ये तो अच्छी लोकेशन ही नहीं थी लोगों के हिसाब से कि यहाँ तो लोग आते ही नहीं, यहाँ तो एक्सेस ही नहीं है। लेकिन आपने दूरस्थ प्लानिंग की, ऐसी लोकेशन ले ली जो सस्ती मिल रही थी, मुनासिब लगी, ले ली। अल्लाह खुद ले आएगा लोगों को, तड़प लेकर आती है। आज जितने लोग हज और उमरे के लिए जाते हैं ना, और हम लोग जो ख्वाहिश रखते हैं, ये इब्राहिम की वो दुआ है और उनके इखलास की वजह से। मेरा आपका काम क्या है? कोई सुने ना सुने हम एक काम शुरू करते ना। कोई आएगा तो आएगा, कोई नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप सोचिए ना, हज एक कोर्स है, जब अनाउंस हुआ था तो कोई था ही नहीं वहां, किसी की ख्वाहिश नहीं थी। और आज हर साल कितनों की फाइलें रिजेक्ट होती हैं कि सॉरी आप इस साल हज पे नहीं जा सकते, तो फिर मैं और आप क्या करें। ये कहना छोड़ दें कोई सुनता ही नहीं, कोई आता ही नहीं, कोई मानता नहीं है। आप अल्लाह से दुआ मांगे, तौफीक मांगे, अल्लाह हमसे कुछ काम ले ले। वो कहते हैं ना, नकार खाने में तोती की आवाज कौन सुनेगा। ये तो मैं कोई नहीं पता तोती की कोई सुनता है कि नहीं, लेकिन ये मुझे यकीन है कि आप तड़प के अगर अल्लाह से कोई काम शुरू कराते हैं, अल्लाह ताला उसमें खैर जरूर ले आता है। इसलिए आपको मुझे जरूरी है अपनी बात के लिए, और जितना हम इस चीज के लिए कोशिश करेंगे उतना अल्लाह ताला हमारे लिए रास्तों को आसान कर देगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उम्मत के लिए कुर्बानी के तरीकों की बात की। हर उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का एक कायदा मुकर्रर किया ताकि इस उम्मत के लोग इन जानवरों पर अल्लाह का नाम ले जो इसने इनको बख्शे हैं। इन मुख्तलिफ तरीकों के अंदर मकसद एक ही है। यहाँ कुर्बानी की बात हुई। आज के शोशे जो है ना, जो लोग बहुत ज्यादा इस्लाम के बारे में तनकीद और तारीफ के हाथ में बातें अपने लेते हैं, वो कहते हैं कुर्बानी ना करो जानवरों को। ओ हो, एनिमल राइट्स के ये बहुत खिलाफ है, बर्बेरिक और दिस एंड दैट और इंसानी सोच है। इतने एतराज हैं इस बात पे, और इंसानों को रोक दिया गोश्त खाने से। बच्चे नहीं खाते, कहते हम कुर्बानी का गोश्त नहीं खाएंगे, आपने मेरा पेट क्यों मार दिया, मैं तो इसको बकरा बना रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। आप ना काटिए, होगा क्या आपको पता, पूरी दुनिया में जानवर मर जाएंगे। दो किस्म के जानवर हैं दुनिया में, एक जो ईटेबल है और एक जो नहीं है। जो ईटेबल है उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, बकरी गाय भैंस आप खुद देखते हैं। इसके बरक्स जो नहीं खाए जाते उनकी ग्रोथ ही इतनी नहीं, आपको डियर्स इतने नहीं देखेंगे दिखेंगे जितनी बकरियां दिखती हैं। तो अगर आपने उनको ना किया तो क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। फिर दूसरा एक और शोशा लोग छोड़ते हैं, भाई इन पैसों से सड़कें बना दो और हॉस्पिटल बना दो, क्या तुम इतना गोश्त और खून बहाते हो, दिस एंड दैट। तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में आज भी कितने लोग हैं जो सिर्फ ईद के मौके पे गोश्त खाते हैं? और क्या आप अपनी शादियों के पैसों से नहीं उस हॉस्पिटल बना सकते? आपको बनाने हैं हॉस्पिटल, आपको सड़कें बनानी है, आपके अपनी बच्ची की शादी आसान सादगी से करूंगी, उस पैसे से ये बात कर दो। फिर आप देखिए कि जितना खून इसका मट्टी में जाता है उतनी जरखेजी आती है, खाद बनती है। गोश्त जो आता है वो फ्रीजरों में भर भर कर ऐसे कहत सदा इलाकों में भेजा जाता है। तो ये एक सुन्नत तरीका, हम इससे क्यों रोकें? 2 दिन के मेकअप की जगह पे आप जाके किसी जगह सड़क बना दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, 100 दफा बनाए। क्या इस्लामी रिचुअल्स पे बात है? याद रखिए, हमारे बच्चों को दीन से दूर करने की बात है। और मैं हमेशा वेस्टर्न मुल्कों में रहने वाले मुसलमानों को एक एडवाइस करती हूँ जो आज से तकरीबन 2.5 महीने बाद आपके भी काम आएगी, और वो क्या कि अपने बच्चों के सामने कुर्बानी करें। मत पाकिस्तान सारे पैसे भेज दें, जी भेज दो, यहाँ बहुत महंगे, वहां कुर्बानी कर देते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट ही नहीं। जो आपने मैंने बचपन में बकरे कटते देखे हैं याद है कि नहीं? हम डरते छुपते, दिल अंदर से तक 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 कर रहा होता था, लेकिन जाके चुपके से, और छुरी चलती थी तो आंखें बंद कर लेते थे। तो वो याद है ना? और वो बकरा जो कुर्बान होता है, क्या वो हमें अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियां नहीं सिखाता? तो जितनी तेजी से इस्लामिक रिचुअल्स अब हमारे बच्चों के जहनों से वाइप आउट किए जा रहे हैं, उसमें एक ये भी चीज है। करें इधर, रोज गोश्त खाते हैं कि नहीं खाते? किसके घर रात को जो गोश्त पक रहा है वो पाकिस्तान से आया है? तो पाकिस्तान में कौन सा सस्ता, और इंडिया में कितना कुछ सस्ता है? सिर्फ ईद के मौके पे आप कहते हैं यहाँ बकरा लेंगे $300 का, बाहर पाकिस्तान भेजेंगे शायद 100 का आ जाएगा। तो क्या अल्लाह के नाम पे हम इस तरह की कंजूसियां करेंगे? काटिए, लेके जाए। यहाँ मुझे नहीं पता है अटलांटा में है कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूस्टन में तो है, बुचर शॉप्स हैं, लोग जाते हैं और जाके वहां बकरे कटवाते लेते हैं अपनी पसंद का, और खाया भी करें। उस बकरे के गोश्त को खाते वक्त जो फीलिंग आती है, जो पहले टाइम गोश्त खाते हैं वो आज भी याद आती है कि ये बकरा थोड़ी देर पहले हमारे सामने जिंदा था, आज हमारे पेट में जा रहा है। तो ये नेचुरली करीब करने वाली बात है, इसलिए इन चीजों को लेकर चलिए, और फिर इंशाल्लाह फायदा होगा। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे लिए ले। फिर ये जो कुर्बानी करने के बातों में है कि जी उसको जानवर को हम अपने सामने देखते हैं, जी बहुत है, तड़पते, अच्छा नहीं लगता। तो इस पे एक यूनिवर्सिटी में किसी ने रिसर्च की थी, हैनोवर यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है मेरे सामने। डॉक्टर्स ने 2 जानवर लिए, एक के सर में इलेक्ट्रोड डाल दिए, इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो तकलीफ की शिद्दत को फील करते हैं। फिर उसने एक बकरे को इस्लामी तरीके से जिबा किया, थोड़ी सी रग काट के छोड़ दिया, और दूसरे को वो बोल्ट स्ट्रेनिंग के जरिए से पूरा काटा। तो उन्होंने बताया कि जिसको बोल्ट स्ट्रेनिंग के जरिए, यानी जिसको झटका आज के दौर में आप कहते हैं, उसे किया, तो वो इतनी ज्यादा तकलीफ से मरा कि जब उसको वो गोली लगी थी तो गोली से पहले वो खौफ की वजह से उस जानवर का दिल धड़कना बंद हुआ और वो पहले ही मर चुका था। इसके बरक्स जो वो इलेक्ट्रोड्स ने पेन की वेव्स फील की, उन्होंने बताया कि जिसको इस्लामिकली जिबा किया उसको बहुत मामूली किस्म की दर्द हुई। जिसने बनाया उसको पता है जानवर उसके आपके इतना प्यार करते हैं जानवरों से, इंसानों से कर ले, उस जात से कर ले, तो जैसे इसी चीज होती है, इस तरह से वो दर्द को नोट किया गया। तो ये सारी चीजें याद रखिए, इस्लामिक रिचुअल धन को जिंदा कीजिए। तो इस साल सब मिलके जाकर एक बड़े से फार्म में जाकर अपने बच्चों के साथ जाके जानवरों को काटिए, इंशाल्लाह इससे भी इस्लाम की खूबसूरती दिखेगी हम सबको। शर्मिंदा ना हो अपने दीन पे, हम उम्मते मुस्लिम हमें शर्मिंदा तो होना ही बिल्कुल नहीं है। और इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी के ऊँटों की बात की, ये तो एक और ही मंजर है। और कुर्बानी के ऊँटों को हमने तुम्हारे लिए शायरिल्लाह में शामिल किया, तुम्हारे लिए इनमें भलाई है, बस इनको खड़ा करके इन पर अल्लाह का नाम लो। और जब कुर्बानी के जानवर उनकी पीठे जमीन पर टिक जाएं, तो इसमें से खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ जो कनात किए बैठे हैं, और इनको भी जो अपनी हाजत पेश करें। तीन हिस्से हैं कुर्बानी के गोश्त के। पहले मसला क्या था, लोग सारा खुद ही रख लेते थे, गरीबों को नहीं देना चाहते। आज क्या मसला हो गया, खुद नहीं खाएंगे सब दूसरों को दे दें, हमारे घर कोई नहीं खाता। और हैरत मुझे उस वक्त होती है जब ईद वाले दिन भी लोगों के घर में पुराना कई दिन का रखा फ्रीजर का गोश्त या चिकन निकाल के बकता है, हैरत किया था। हमने जब देखा, यही देखा कि ईद से एक हफ्ता पहले गोश्त छोड़ देते थे पकाना, आज सब्जी पक रही है, दाल बन रही है, आज खिचड़ी बन रही है, क्यों? ईद पे गोश्त खाएंगे तो मजा आएगा, और खाने से पहले छोड़ा तो ही मजा आता है। आज तो ईद से एक दिन पहले फ्रिज गोश्त का भरा होता है, खाने पक्के होते हैं, दाबते हैं, तो कभी खाइए कभी छोड़िए। तो फिर क्या करें, गोश्त लेना कब छोड़ना है आप लोगों ने? जिलहज से पहले ही छोड़ते हैं, ठीक है? आप कहेंगे हमारे पास तो 6 माह का सामान तैयार है, अब हम क्या करें? तो बहरहाल ये है कि कभी होगा कभी नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो फरमाया कि इनको भी खिलाओ जो नहीं खा सकते। इन जानवरों को हमने इस तरह तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है ताकि तुम शुक्रिया अदा करो, ना इनके गोश्त अल्लाह को पहुंचते हैं ना खून, मगर तुम्हारा तकवा उसको पहुंचता है। दुआ करें हमें तकवा मिल जाए। गोश्त हम खा जाते हैं, खून मट्टी में चला जाता है, अल्लाह को हमारे जज्बे पहुंचेंगे। इसने इनको तुम्हारे लिए इस तरह मुसख्खर किया ताकि इसकी बख्शी हुई हिदायत पर तुम इसकी बड़ाई बयान करो, और ए नबी बशारत दे दो नेक काम करने वालों को। क्या हाईलाइट कीजिएगा, बड़ी प्यारी आयत है, इन्नल्लाह युदाफियुनिल्लज़ीना आमनू, यकीनन अल्लाह दिफा करते हैं उन लोगों की तरफ से जो ईमान लाए, यकीनन अल्लाह किसी खाइन काफिर नेमत को पसंद नहीं करता। ये है आपके लिए फिर एक मैसेज उम्मते मुस्लिमा के नाते से, डोंट वरी डोंट बी स्केयर्ड, अल्लाह विल प्रोटेक्ट यू। अल्लाह तुम्हें एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, तुम्हारा हर नुकसान मैं पूरा करूंगा, तुम एक दफा मेरे रास्ते में निकलो। हम कहते हैं हम बड़े मजबूर हैं, तो याद रखिए जब तक मजबूर रहेंगे मदद नहीं आएगी, जब तक मसलहतें हमारा साथ नहीं छोड़ेंगी हमें अल्लाह का साथ नहीं मिलेगा। हम टस से मस नहीं होते, अपनी रसूमात साइड बाय साइड चलती हैं, स्टाइल ऑफ लिविंग चलता है, अल्लाह को फिर काम की मेरे जरूरत नहीं। जब अल्लाह की मदद का जज्बा दिल में उभरता है फिर अल्लाह की तरफ से रहमत आती है। तो आज उम्मते मुस्लिमा पूरे ग्लोब के ऊपर इस आयत को ही लिख कर डाल दे कि जब सच्चा ईमान आएगा अल्लाह किसी मुसलमान को मरने नहीं देगा काफिर की गोली से। नबी सल्लम की 10 साल मदनी जिंदगी को देख लीजिए, उंगलियों पे गिने हुए वो 70 लोग जो मैदान जंग उहद में मारे गए, 70 रजी के वो लोग जो गजवा रजी के अंदर धोखे से उन्होंने जाके हुफाज को मार दिया, बदर के 10-12 लोग, 2-4 कुछ इस तरह से मिलते, यानी सारे फिगर्स आप जमा कर लेना नबी सल्लम की जंगों में मुसलमानों के नाते से, तो वो 200-300 से जायद लोग नहीं मरे 10 सालों में। सॉरी आज कितने मर रहे हैं, चले तब तो जंगों में जाके मरते थे, आज तो घरों में बैठे हुए। जब आपके अंदर ईमान होता है अल्लाह आपका दिफा करता है, फिर अल्लाह आपकी साइड लेता है, फिर अल्लाह दूसरों के दिलों में आपका रोब डाल देता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें ये सारी खूबियां अता कर दे। इजाजत दे दी गई है इन लोगों को जिनके खिलाफ जंग की जा रही है क्योंकि वो मजलूम है, और अल्लाह यकीनन इनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए सिर्फ इस कसूर पर वो कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए से दूर न करता तो खानकाहें और गिरजे और माबद और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से नाम लिया जाता है सब मिसमार कर दी जाती। अल्लाह जरूर इनकी मदद करेगा जो उसकी मदद करेंगे। अल्लाह बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। हाईलाइट करिएगा, ये हमारे पास बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी में कहीं लिखा हुआ भी है, किसी ने एक बना के दी थी। ये है आपका मेरा स्लोगन, इसको साथियों ने जो वॉलंटियर्स करते हैं ना लंदन में गालिबन, ये कहा है मुझे याद नहीं आ रहा, ये कोटेशन पूरी लिख के लगाई हुई, वाला यंसुरन्नल्लाहुमय्यंसुरु। 3 दफा जरा इसको गौर से पढ़े, जो अल्लाह की मदद करेगा अल्लाह उनकी मदद करेंगे। तो अल्लाह की मदद क्या है, अल्लाह को हमारी मदद की जरूरत है? नहीं, अल्लाह के दीन की मदद, इस्लाम की मदद, दुआ कीजिए अल्लाह हमें इसमें डाल दे। अब हम अल्लाह के दीन की मदद करेंगे तो कैसी करेंगे, जो हमारी औकात है जितना कर सके। तो जब अल्लाह हमारी मदद करेगा तो हमारे काम कैसे होंगे। इसलिए आप अल्लाह के रास्ते में जब निकलते हैं ना, तो आपके काम ऐसे होने लगते हैं कि जैसे उनके भी नहीं होते जो सारा सारा दिन मेहनत करके अपने आप को ख्वार कर लेते हैं, क्योंकि वो आप नहीं कर रहे होते, वो अल्लाह के लिए कर रहा होता है। और अल्लाह ताला बड़ा ताकतवर और जबरदस्त है। यहाँ आप देख रहे हैं कि अब एकदम जंगों का जिक्र शुरू हुआ, तो इसको समझ लीजिए हज का जिक्र हो रहा है। और हज होता है खाना काबा में। जिस दौर में ये सूरतें नाजिल हो रही हैं, तो मक्का वालों ने मुसलमानों पे इतने टॉर्चर किया, उस जगह को कैद कर दिया, कुछ को हिजरत पे मजबूर कर दिया। तो यहाँ बता दिया कि वहां जाके इबादत करने के लिए किताल लाजमी है। तभी तो सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी ने जब मक्का में जाकर लोगों को जमा किया, तो उसके बाद ही मक्का फतह हुआ। तो कभी कभी फिर किताल लाजिम हो जाता है अल्लाह का दीन नाफिज करने के लिए। अब आगे इसी तरह की बात, कि जब किसी को अल्लाह अपनी जमीन के कुछ टुकड़े दे दे जहां वो अल्लाह का दीन नाफिज करना चाहता है, तो क्या करे। अल्लज़ीने मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अकामुस्सलाता वआतुज़्ज़कात। ये वो लोग हैं जिनको अगर हम जमीन में इक्तदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे, जक़ात देंगे और नेकी का हुक्म करेंगे और बुराई से मना करेंगे, और तमाम मामलात का इंजाम कार अल्लाह के हाथ में। या हम दुआ तो कम अज कम करते हैं कि अल्लाह आज भी ऐसे लोग पैदा कर, एक दफा उनको जमीन के टुकड़े मिल जाएं तो फिर वो नमाजें कायम करें और जकात दें और ये सारी दीन की अमली चीजें वहां लागू कर दें। वहीं युकज्जिबू का फकत कज्जबत कबलहुम कौम नूहिन वादुम वसमूद। ए नबी, अगर वो यानी कुफार तुमको झुठलाते हैं, तो इनसे पहले कौम नूह और आद और समूद और कौम इब्राहिम और कौम लूत और अहले मदियन भी झुठला चुके हैं और मूसा भी झुठलाए जा चुके हैं। इन सब मुनकरी ने हक को मैंने पहले मोहलत दी फिर पकड़ लिया, अब देख लो मेरी पकड़ कैसी थी। कितनी ही खताकार बस्तियां जिनको हमने तबाह किया और आज वो अपनी छतों पर उल्टी पड़ी हैं। कितने ही कुएं बेकार और कितने ही महल खंडर बने हुए हैं। क्या ये लोग जमीन में चले फिरे नहीं कि इनके दिल समझने वाले और इनके कान सुनने वाले होते। हाईलाइट कीजिए इसको। فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها। दुआ करें अल्लाह हमें समझने वाला दिल दे दे। यहां से पता चलता है कि समझने और सोचने का काम दिमाग नहीं, दिल करता है। और दिल चाहने लगे तो दिमाग खुद ब खुद उसकी मदद करना शुरू हो जाता है। और सुनने वाले कान, हकीकत यह कि आंखें अंधी नहीं होती मगर वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में। दुआ कीजिए अल्लाह हमारे दिलों के अंधा होने से बचा दे। कुरान से दूरी दिल की मौत है। ये लोग अजाब के लिए जल्दी मचाते हैं। अल्लाह ताला हरगिज अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, मगर तेरे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारे शुमार के 1000 बरस के बराबर होता है। वाकई ये मिन करियतिन अमली तुलहा। कितनी ही बस्तियां जो जालिम थी फिर मैंने पहले तो इनको मोहलत दी फिर पकड़ लिया। नोट करें, वाहिद मुतकल्लिम अल्लाह ताला अपनी तरफ निस्बत ले रहे हैं। मैंने इनको मोहलत दी फिर मैंने इनको पकड़ लिया और सबको वापिस तो मेरे ही पास आ। कुल या अय्युहन्नास इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन। ऐ नबी कह दो कि लोगों, मैं तो तुम्हारे लिए सिर्फ वो शख्स हूं जो बुरा वक्त आने से पहले साफ साफ खबरदार कर देने वाला हो। फिर जो ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे इनके लिए मगफरत और इज्जत की रोजी है, और जो हमारी आयात को नीचा दिखलाने की कोशिश करेंगे वो जहन्नुम के साथी हैं। दुआ कर लीजिए कि अल्लाह हमें ईमान के बदअमल साले की तौफीक दे, और कभी अपनी इज्जत और अपना नाम बचाने के लिए तेरे दीन को नीचा करने की तौफीक न देना। ऐ नबी, हमने आपसे पहले भी कोई ऐसा रसूल ना भेजा ना नबी जिसके साथ ये मामला पेश ना आया हो। जब उसने तमन्ना की, शैतान उसकी तमन्ना में खलल अंदाज हो गया। इसी तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजियां करता है, अल्लाह इनको मिटा देता है और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। अल्लाह अलीम भी और हकीम भी है। नबी की ख्वाहिश क्या होती है? दीन फैले, इस्लाम फैले, लोग अल्लाह की किताब से जुड़े। शैतान क्या चाहता है? ना हो। कल भी यही था, आज भी है। नबी के दौर में अल्लाह के नबी की तड़प के बावजूद हर बंदा दीन नहीं सीख सका, तो आज कैसे कोई सीखेगा? क्योंकि शैतान बीच में रुकावटें डालता है, वसवसे डालता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि शैतान की इन बातों से बचो। इस तरह जो कुछ भी शैतान खलल अंदाजियां करता है, अल्लाह इनको मिटा देता है और अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। अल्लाह अलीम भी और हकीम भी है। और ये वो इसलिए ऐसा होने देता है ताकि शैतान की डाली हुई खराबी को फितना बना दे इन लोगों के लिए जिनके दिलों को निफाक का रोग लगा हुआ है और जिनके दिल खोटे हैं। हकीकत है कि ये जालिम लोग दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए और इल्म से बहरामंद लोग जान लें कि यह हक है तेरे रब की तरफ से और वो इस पर ईमान ले आएं और इनके दिल इसके आगे झुक जाएं। यकीनन अल्लाह ईमान लाने वालों को हमेशा सीधा रास्ता दिखाता है। दुआ करें अल्लाह में भी ये सारी खूबियां दे दें और ख़ास तौर पर हमारे दिल कुरान के आगे झुक जाएं। जो नहीं झुकते उनका हाल क्या होता है? वला यज़ालुल्लज़ीना कफरू फी मिर्यति मिन, इनकार करने वाले तो इसकी तरफ से शक ही में पड़े रहेंगे यहां तक कि या तो इन पर क़यामत की घड़ी अचानक आ जाए या एक मनहूस दिन का अजाब नाजिल हो जाए। इस रोज बादशाही अल्लाह की होगी और वो इनके दरमियान फैसला करेगा। जो ईमान रखने वाले और अमल सालिक करने वाले होंगे वो नेमत भरी जन्नतों में होंगे। अल्लाह हमें उनमें कर दे, हमारी नस्लों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे वालदैन को, हमारे रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों को, उम्मत मुस्लिमा को इनमें शामिल कर ले। और इसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, जिन्होंने कुफर किया और हमारी आयतों को छुटलाया होगा इनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब होगा। वल्लज़ीना हाजरू फी सबीलिल्लाहि थुम्मा कुतिलू, फिर जिन लोगों ने अल्लाह की राह में हिजरत की, दुआ कीजिए हमें हिजरत की तौफीक मिले, फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, अल्लाह इनको अच्छा रिस्क देगा। और यकीनन अल्लाह ही बेहतरीन राजिक है, वो इन्हें ऐसी जगह पहुंचाएगा जिससे वो खुश हो जाएंगे। बेशक अल्लाह अलीम और हलीम है, ये तो है इनका इंजाम। और जो कोई बदला ले ले वैसा ही जैसा इसके साथ किया गया और फिर इस पर ज्यादती भी की गई हो तो अल्लाह इसकी मदद जरूर करेगा। अल्लाह माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला है। अल्लाह हमें भी माफ करने वाला और दरगुजर करने वाला बना दे। आगे अल्लाह ताला की कुदरत की चंद निशानियां, ये इसलिए कि रात से ही दिन और दिन से रात निकालने वाला अल्लाह है, वो समी बसीर है। और ये इसलिए कि अल्लाह ही हक है, वो सब बातिल है जिनको अल्लाह को छोड़कर ये लोग पुकारते हैं। और अल्लाह ही वाला दस्त और बुजुर्ग है, क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है और इसकी बदौलत जमीन सरसब्स हो जाती है। हकीकत यह कि वो लतीफ व खबीर है, इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, बेशक वही गनी और हमीद है। क्या तुम नहीं देखते किसने वो सब कुछ तुम्हारे लिए मुसख़र कर रखा है जो जमीन में है, और उसी ने कश्ती को कायदे का पाबंद बनाया कि वो इसके हुक्म से समंदर में चलती है। हर आयत के बाद के जी अल्लाह हम सोचते हैं, हमारा ईमान नहीं, ये सब काम आप ही करते हैं। और वही आसमान को इस तरह थामे हुए कि इसके इज़्ज़त के बगैर वो जमीन पर नहीं गिर सकता। वाकया ये है कि अल्लाह लोगों के हक में बड़ा शफीक और रहीम है। लगता क्या था कि इसके बाद क्या आएगा कि जिसके पास इतना कुछ है वो बड़ा जालिम और रोब वाला और गुस्से वाला है। दुनिया में जिसकी अथॉरिटी होती है लोग उससे डरते हैं। अल्लाह कहते हैं ये सब मैं करता हूँ, लेकिन याद रखो इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। क्या पता चला कि आप भी जितना लोगों के नफे के बनते जाएं उतना आपके अंदर रहीमी आती जाए और रफत आती जाए। आप भी अपने अंदर नरमी पैदा करें ताकि आप दूसरों को कुछ फायदा देना चाहें, क्योंकि ये भी एक तकब्बुर होता है कि जरा सा किसी के काम के हो गए शुरू सर पे आंखें रख ली और किसी से बात करके भी नहीं देते। फिर फरमाया वही है जिसने तुमको जिंदगी बख्शी, वही तुमको मौत देता है, फिर वही तुमको जिंदा करेगा। यानी तुम तो जीने और मरने के लिए उसके मुख्ताज हो, तुम उसे बेनियाज कैसे रह सकते हो? सच ये कि इंसान बड़ा ही मुनकिर हक है। सोचिए, हाय हक का इनकार करता है इंसान, मैं हक का इनकार करती हूँ। हर उम्मत के लिए हमने एक तरीका इबादत मुकर्रर किया है जिसकी वो पैरवी करती है। बस से नबी वो इस मामले में तुमसे झगड़ा ना करें, तुम अपने रब की तरफ दावत दो, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। और अगर वो तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह क़यामत के रोज तुम्हारे दरमियान इन सब बातों का फैसला करेगा जिनमें तुम इख्तलाफ करते रहे हो। क्या तुम नहीं जानते कि जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह के इल्म में है? सब कुछ एक किताब में दर्ज है, अल्लाह के लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं। सोचिए जरा चंद सेकंड के लिए, ये लोग जो अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत करते हैं, जिनके लिए ना तो इसने कोई सनत नाजिल की और ना ये खुद इनके बारे में कोई इल्म रखते हैं, इन जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं। इनको जब हमारी साफ साफ आयतें सुनाई जाती हैं तो तुम देखते हो कि मुनकरीन हक के चेहरे बिगड़ने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अभी वो इन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो इन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। इनसे कहो मैं बताऊं तुम्हें इससे बरतर चीज क्या है? अन्नार। हाईलाइट कीजिएगा सिर्फ इतने लफ्ज को, النار آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا وبئس المصیر. اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی جو اللہ کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے، ان کا نصیب صرف آگ ہی ہے. اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے. اس کے بعد بڑی خوبصورت مثال ہے شرک اور توحید کے فرق کو سمجھنے کی. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لوگوں ایک مثال دی جا رہی ہے، غور سے سنو. یہ میں نہیں کہہ رہی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. کیونکہ سمیع ہوتا ہے سننا، اور استمع غور سے سننا. جن معبودوں کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین لے جاتی ہے تو وہ اسے بھی چھڑا نہیں سکتے. مدد چاہنے والے بھی کمزور ہیں، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور ہیں. تو شرک ہوتا کیوں ہے؟ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. لوگوں نے اللہ کی وہ قدر ہی نہ پہچانی جو کہ اس کی قدر کا حق تھا. کیوں؟ کیسے؟ اللہ کی کیا شان ہے؟ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. واقعہ یہ کہ اللہ قوت اور عزت والا ہے. شرک کرنے والا شخص نہ شکرہ شخص ہے. بے قدرہ شخص ہی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور در پہ جائے گا. سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ اتنی کرنی والا جو دن رات ہمارے کام کر رہے ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر کدھر جاتے ہیں؟ قبروں پہ. اور یہ مثال ہے مکھی کا ذکر، جس کو سن کر مکہ میں کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا تھا. تو آیت نازل ہو گئی تھی کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، کہ تم مکھی کی بات کرتے ہو تو پھر بڑی ہے، میں تو مچھر کی بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اور مکھی جب چیز لے جاتی ہے تو انسان کے بس میں نہیں رہتی. آپ دیکھیے کہاں مکھی بیٹھے گی، آپ کو کچھ نہیں پتا. اور یہ بھی اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے. 500 آنکھیں ہوتی ہیں مکھی کی. اس کے سر کے اوپر اللہ نے وہ جو کالی سی کلگی ہے نا، وہ چھوٹے چھوٹے لینزز ہیں. کسی نے کہا کیا فائدہ ہوا 500 آنکھوں کا، بیٹھتی پھر گندگی پہ ہے. لیکن حقیقت ہے کہ مکھی بھی اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے. تو مشرک جو ہے نا، وہ گندگی پہ بیٹھنے والا شخص ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے. اب آخری آیتیں جو آج کی آیات تدبر بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کو اس کی تفسیر کیا، اس پہ درس بہت ہی ہے. مجھے ایک دو یاد بھی ہیں، اگر آپ بعد میں رابطہ کریں تو ہم ان کو وہ درس بھیجتے ہیں. یعنی خون کو گرم کر دینے والی آیتیں. اب اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم گرم ہو سکے، لیکن ہم اس کا خلاصہ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر. حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے فرامین کو بھیجنے کے لیے ملائکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی. فرشتوں میں اس نے کس کو چنا؟ جبرائیل علیہ السلام کو. اور انسانوں میں کس کو چنا؟ انبیاء کو. اور انبیاء کے بعد کس کو چنا؟ مجھے آواز نہیں آ رہی. میں سمجھی آپ اس کے جواب میں کہیں گی مجھے چنا. آپ اپنا نام لکھیں، یہ آپ کی بات ہے. تمہارا پڑھتی ہوں، اب غور سے سنیے گا. اللہ یستفی من الملائکہ رسلا و من الناس. حقیقت یہ کہ اللہ اپنے فرامین کو بھیجنے کے لیے فرشتوں میں سے بھی پیغام دینے والوں کو چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی. وہ سمیع اور بصیر ہے. جو کچھ بھی لوگوں کے سامنے، اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اور سارے معاملے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. اللہ کی بڑی شان ہے کہ لوگوں کو اپنا پیغام دینے لینے کے لیے چن لے. چاہے بول کے دیں، چاہے بولا و سنوا کر دیں، چاہے مینجمنٹ میں بیٹھ جائیں، ٹیکنیکل پہ بیٹھ جائیں، اپنے لیے دعا کر لیں کہ اللہ تو مجھے بھی چن لے. اللہ اپنے پیغام کو عام لوگوں کو نہیں دیتا. کیا آپ کسی راہ جاتے کو میسج دیتے ہیں کہ ذرا یہ جا کے آگے میسج دے دو؟ پتہ چلا وہاں جا کے میسج کچھ اور کا کچھ بنا ہوا ہے. آپ بھی بڑے باشعور بچے، سمجھدار انسان کو کہتے ہیں یہ بات کہی ہے، جاؤ وہاں یہ آفس میں میسج دے کر آؤ. اللہ کچے لوگوں سے اپنا پیغام نہیں دلوائے گا. ابھی اوپر فرد کی بات تھی، یہاں آپ خود تھے. اب ایک امت کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور نیک کام کرو. اسی سے توقع کی جاتی ہے کہ تم کو فلاح نصیب ہوگی. بہت سارے لوگ یہیں رک گئے، کہتا الحمدللہ نمازیں پوری، باقی قضا پڑھ لیں قضا عمریوں کی صورت میں ماشاءاللہ، رکوع پورے، سجدے پورے، عبادت پوری، اور خیر کے نام پہ صدقہ بھی کرتے ہیں، دیٹس اٹ. حالانکہ اب دیکھیے آیت آگے الگ شروع ہو رہی ہے، حالانکہ اس کو اس میں ڈالا جا سکتا تھا، لیکن یہاں تک ہے انفرادی عبادات. اس میں بہت نمبر آئیں گے لوگوں کے انشاءاللہ. آج بھی مسلمانوں کی انڈیویجول ورشپ بہت زیادہ ہے، 8 سے 20 بھی تراوی پڑھتے ہیں پھر نہیں تھکتے، الحمدللہ. حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، فرض بھی کیے، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ. لیکن جس چیز کے نمبر آج امت کے کٹے ہوئے ہیں وہ ہے وجاہد فی اللہ حق جہادی ہے، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، محنت کرو، کوشش کرو، جیسا کہ جہاد کا حق ہے. کیوں بھائی ہم کیوں کریں؟ ہو اجتباکم، اس لیے کہ اس نے تم کو چن لیا، ہی ہیز چوزن یو. اوپر لفظ دیکھیے یستفیدہ، صفیہ نام آپ نے اردو میں سنا ہوگا، چننا، چناؤ. یہاں اجتبا، مجتبا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے مصطفیٰ، مجتبا، چنا ہوا شخص، وہی نام آپ کو مل رہا ہے. چوز اور سلیکٹ کا فرق پیچھے بتا چکی ہوں، وہی یہاں اللہ نے آپ کو سلیکٹ کیا، وکٹری سٹینڈ پہ امت مسلمہ آپ کو کھڑا کر دیا، اور ڈرو نہیں، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا اور دین میں تم پر کوئی تنگی قائم نہیں کی. کیا کرو؟ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جو اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر. اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام کیا رکھا؟ اب اس کو سنیے اور دعا کریں اللہ فرقوں والے ناموں سے ہمیں تو کم از کم آزاد کر دے، دوسروں کی تو ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن ہم قرآن میں دیکھیے یہ تیسرا مقام آ رہا ہے جہاں لفظ مسلم آپ کے میرے لیے آ رہا ہے، ہو سماکم المسلمین، اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا، من قبل وفی ہذا، اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے. بھیجا کیوں دنیا میں؟ نمازیں پڑھنے، روزے رکھنے؟ نہیں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ ہو. کس بات کے؟ حق کے، شہادت حق کی گواہی دینے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا. دوسرے پارے کی پہلی آیتیں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ایک ایمان والا زندگی بھر لوگوں پر حق بات کا گواہ بنتا ہے، اللہ موت دے کر اس کو پھر شہادت کی موت دیتا ہے. زندگی میں شہادت ہوگی نا حق کی، تو موت شہادت کی ہوگی، چاہے گھر کے بستر پہ مریں گے. ساری زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے، پرموٹ کرنے میں گزاریے، اللہ آپ کی موت شہادت کی موت کر دے گا. کہا اسی لیے فرمایا، اب کرو کیا؟ فاقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ واتو الزکاۃ واعتصموا باللہ، بس نماز قائم کرو، زکاۃ دو، اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو. یہ کون سے مضبوطی سے تھامنا؟ کسی خوشی غم دکھ سکھ میں رب نہ چھوٹے، ایسا تھام لو کہ بس پھر کسی کو نہ تھامنے کی ضرورت پڑے. کیونکہ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ کتنا اچھا ہے دوست اور کتنا اچھا ہے مددگار. بہت خوبصورت آیتیں، اللہ نے امت مسلمہ کو ان کی اوقات یاد دلا دی. خوشیاں مناؤ، تمہارا چناؤ ہو گیا، تم رسالت کی کڑی میں ایک تیسرے لنک کے طور پہ جوڑے گئے ہو. پہلے کیا تھا؟ فرشتہ، اور پھر رسول اور انسان. آج کے فرشتہ جبرائیل، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا لنک میرا اور آپ کا جوڑ دیا امت مسلم اور امت وسط کا. اگر ہمیں اپنی یہ شان نظر آ جائے نا، تو یاد رکھیے پھر ہم کبھی کام ڈھیلے نہیں کریں گے. جس کو یہ مقام یاد رہا وہ کام وہی کرے گا. پیچھے رہیں گے تو گندگی دور نہیں ہوگی. دعا کیجئے کہ ہم اس پہ کوشش کر لیں. انفرادی عبادات امتوں کو نہیں بچاتی، اصل بات یہ کہ ہمارا آپ کا کام دوسروں سے مختلف ہے. ہم سوچتے ہیں جو دوسرے ہیں بس ہم اسی طرح کے لوگ ہیں، تو نہیں. ہو اجتباکم، تمہیں اللہ نے چن لیا. وہ کہتے ہیں نا کہ تو کیا سکوام مغرب پر نہ کر، کہ خاص ہے ترکیب میں قوم ہاشمی. یہ جو رسول اللہ کی قوم ہے نا، اس کا مزاج عام لوگوں سے بڑا فرق ہے. اس لیے مجھے اور آپ کو کوشش کرنا ہے. اللہ کو پارٹ ٹائم مسلم نہیں چاہیے، اللہ کو صرف عبادت کرنے لئے مسلم نہیں چاہیے، وہ تو فرشتے بھی بہت ہیں. اللہ مکہ سے نکال کر مدینہ میں کیوں لایا؟ مکہ میں عبادتیں کرتے رہتے، مدینہ میں اس لیے لایا کہ اللہ کے راستے میں اٹ موسٹ کوشش کرو. ईस्ट में रहो, वेस्ट में रहो, जिधर जाओ जो करो, दुनिया अच्छा के तो भी करो, दुनिया बुरा के तो भी करो, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देख कर रोना आता है। अल्लाह हम सब की इस्लाह कर दे। वो मौलाना अली ने कहा कि जो दीन बड़ी शान से निकला था वतन से, आज परदेश में गरीबुल गुरबा है। कैसी जज्बे के साथ इस दीन का आगाज हुआ था, ऐसे इस्लाम फैल रहा था चारों तरफ, और आज हाल क्या कि अपने ही लोगों में हम अजनबी। आज दीन यतीम बच्चे की तरह गिरा पड़ा, और हम इंतजार करें कोई हमें कहे तो हम करें, कहा ही नहीं तो मैंने किया ही नहीं। बच्चा गिरे तो माँ को कोई मैसेज भेजता है, कोई उसको थिंक्स टू डू भेजता है कि आपने गिरते बच्चे को भी उठाना है? माँ तो बेसोचे समझे उठ के भाग जाती है। जिसके दिल में इस्लाम से मोहब्बत है वो आज इस्लाम के लिए जरूर उठेगा। वी कैन बी अवर ओन जज, वी नो वट वी आर गोइंग टू डू। हमारी इफ्तारियां, हमारी नमाजें हमें कभी इस्लाम को नहीं पढ़ाएंगी जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे। दुआ कीजिए कि आज अल्लाह हमसे खिदमत ले लें। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक।